उसकी कमाल की एक्टिंग देखकर तो आहान ने भी अपने दांत भीतर से दबा लिए और वो सोचने लगा कि अगर इसका बाप शेर है तो ये पक्का सवा शेर निकलेगा। उसी वक्त अंश ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। अब आगे अरमान, जो इस वक्त संजना को पूरी तरह से स्पेशल फील करा रहा था, वो आगे बढ़कर खुद उसे डिजर्ट सर्व कर रहा था। तभी उसके कानों में अंश के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर अचानक उसका हाथ रुक गया और वो मुड़कर अंश की ओर बेचैनी से देखने लगा। आहान झूठा नाटक करते हुए अंश को चुप कराने का दिखावा कर रहा था। वहीं आस्था, नानी माँ और बाकी सबका ध्यान तो उस वक्त अगर किसी पर था तो वो सिर्फ और सिर्फ संजना सिंह पर। वहीं अरमान अब अंश की आवाज़ से पूरी तरह से बेचैन हो चुका था, या यूं कहो कि परेशान हो गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अंश के रोने की आवाज़ से उसका दिल इतना क्यों बैठा जा रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गया और आहान पास आकर बोला, ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? उसके सवाल पर आहान ने झट से जवाब दिया, भैया लगता है इतने सारे मेंबर को एक साथ देखकर ये डर गया है बेचारा, इसीलिए चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे चुप करवाऊं, अब इस बच्चे को कौन चुप करवाएगा? आहान का जवाब सुनकर अरमान के माथे पर केक पल के लिए शिकन आ गई और उसने झट से आहान से पूछा, तो तुम इस बच्चे को उसकी माँ को भी तो दे सकते हो ना, तुम क्यों इसे संभाल रहे हो? फिलहाल इस बच्चे का रोना बंद करवाओ, इसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा तो वैसे ही आहान ने तुरंत चिंतित आवाज में जवाब दिया, हाँ भाई मैं भी यही सोच रहा था कि इस बच्चे को उसकी माँ को दे दूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि उसकी माँ भी कुछ देर पहले किचन में काम कर रही थी और उन्होंने मिर्च मसाले वाला खाना बनाया है और अगर गलती से उनके मिर्च वाले हाथ इस बेचारे बच्चे को लग गए तो ये बहुत परेशान हो जाएगा, यही सोचकर मैंने उन्हें नहीं दिया। अब जैसे ही आहान ने ये बहाना बनाया तो अरमान उसे घूरते हुए बोला, एक काम करो, इस बच्चे को मुझे दो, मैं इसे शांत करवाता हूँ। उसकी इस बात पर आहान ने अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहा, तो कीजिए ना भाई, आप इसे एक बार गार्डन में घुमा लाइए, हो सकता है ये शांत हो जाए और क्या पता ये सो भी जाए। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान ने अंश को उठाया और गोद में लेकर ना चाहते हुए भी बाहर की ओर जाने लगा। वहीं संजना अपनी आंखों से ये दृश्य घूर कर देख रही थी कि अरमान अंश को लेकर बाहर जा रहा है। वो तुरंत ही आगे बढ़ी और मिस्टर सिंघानिया कहते हुए उसके पीछे जाने लगी, लेकिन तभी राधिका, रश्मि, रौनक और वंशिका ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। रश्मि ने उसे घूरते हुए एकदम से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से सिंघानिया मेंशन में आने की? वहीं राधिका भी आईब्रो चढ़ाते हुए गुस्से में बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के पति के साथ इस तरह से गले लगते हुए? रौनक और वंशिका ने एक साथ कहा, बताओ कौन हो तुम, वरना हम मिलकर यहीं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे। तभी आकाश सिचुएशन संभालने के लिए तुरंत आगे आया और सबको चुप कराते हुए बोला, लड़कियों शांत हो जाओ, ये कोई और नहीं बल्कि अरमान की न्यू सेक्रेटरी है, इन्हें मैंने ही अपॉइंट किया था और देव ने भी इसी का रिकमेंडेशन दिया था। ये सुनकर चारों लड़कियां ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखा, लेकिन अगले ही पल रौनक फौरन रिएक्ट करते हुए बोली, क्या अरमान भाई को अफेयर करने के लिए अपनी न्यू सेक्रेटरी ही मिली थी? अरमान भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहीं अब सुमित, ध्रुव और आहान भी वहां पहुंच चुके थे। आहान संजना को देखते हुए धीनी मगर डरावनी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ अरमान भाई की सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था और तुम्हें ये बात साफ साफ समझा दी गई थी कि अरमान भाई के साथ थोड़ा सा इशू हुआ है जिसकी वजह से उन्हें कुछ बातें याद नहीं रहती हैं, इसीलिए तुम्हें सिर्फ उनके साथ रखा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी इस सिचुएशन का फायदा उठाओ। ये सारी बातें सुनकर अचानक संजना की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने भर्राई आवाज में कहा, देखिए आप सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं, बॉस ने ही हमें फोर्स किया था। वो अचानक हमारे सामने आए और बोले कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं। हमने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली और हमारे माथे पर तान कर बोले, अगर हमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो हमें गोली मार देंगे। तो बताइए उस सिचुएशन में हम क्या करते? अब जैसे ही संजना ने ये इमोशनल कार्ड खेला और खुद को पूरी तरह से बेचारा दिखाया तो नानी माँ और आस्था का गुस्सा पूरी तरह से हावी होने लगता है। वहीं संजना की इस बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। थोड़ी देर पहले तक सभी लोगों के दिलो दिमाग में संजना के लिए गुस्सा था, लेकिन अब संजना की इस बात को सुनकर उन्हें लगा कि शायद गलती अरमान से ही हुई होगी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि अरमान अपने गुस्से और जुनून में अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन तभी अचानक नानी माँ भड़कते हुए बोली, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, दामाद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इसी ने अपने लटके झटके दिखाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया होगा। अब जैसे ही नानी माँ की डेंजरस और तीखी आवाज वहाँ गूंजी तो सब लोग वैसे ही शॉक हो गए, क्योंकि किसी ने भी नानी माँ को इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा था। वहीं दादाजी और अभिमान जी तुरंत ही आगे आए, उन्होंने नानी माँ के दाएं बाएं खड़े होकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाया, बहन जी शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और आप तो अरमान को जानती है ना, क्या पता उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। मुझे लगता है कि शायद इस बेचारी लड़की की कोई गलती नहीं है। तभी नानी माँ ने तुरंत दादाजी का हाथ झटकते हुए कहा, बेचारी, आपको ये लड़की कहाँ से बेचारी दिखती है भाई साहब, आप इस लड़की की असलियत नहीं जानते। ये बोलकर नानी माँ गुस्से में आगे बढ़ी और सीधा संजना के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसे नफरत भरी नजरों से घूरते हुए बोली, बता किस लिए आई है तू यहाँ पर? तू यहाँ मेरी गौरी की जिंदगी बर्बाद करने आई है ना? तू मेरी गौरी की जगह लेना चाहती है ना? हाँ बोल, जवाब दे। वही आस्था जो अभी तक इस पूरी घटना से सदमे में थी, वो पूरी तरह से बुत्सी बन गई थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की वही थी जिसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ आस्था से ही सबसे ज्यादा नफरत थी। फिलहाल नानी माँ को अपने सामने देखकर संजना ने एक बार फिर एक्टिंग शुरू की और मासूमियत से बोली, देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कहा ना, मिस्टर सिंघानिया ने ही मुझे फोर्स किया था और मुझे अपने घर में इस तरह से आने के लिए कहा था। अगर मैं उन्हें मना कर देती तो वो मुझे मार डालते। बस इतना सुनते ही नानी माँ ने तुरंत ही संजना के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को खींचते हुए उसे फटकारने लगी, सच सच बता तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? बोल, वरना तेरी हड्डी पसली यहीं तोड़ दूंगी। बोल, क्या करने आई है तू यहाँ पर? अब नानी माँ का ऐसा भयंकर रूप देखकर सब लड़के और लड़कियाँ मुंह खोलकर हैरानी से उन्हें देखने लगे। सबको लगने लगा कि शायद इस लड़की ने आस्था की जगह लेने की कोशिश की है, शायद इसीलिए नानी माँ इतना ज्यादा भड़क रही हैं और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हैं। तब सभी लड़कियाँ तुरंत हड़बड़ाहट में आगे बढ़ी और नानी माँ को पकड़ते हुए बोली, नानी माँ छोड़ दीजिए, हम जानते हैं कि आपको इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, नानी माँ प्लीज छोड़ दीजिए। अब सब लड़कियाँ आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। यार नानी माँ तो कितनी ज्यादा डेंजरस निकली।
सोचो अगर वाकई में अरमान भाई पुराने वाले अरमान भाई होते और सच में किसी लड़की को ले आते, तब तो नानी माँ अकेले ही मार मार कर उनका भरता बना देती, चाहे वो कितने ही बड़े डेविल किंग क्यों ना हो। उनकी इस बात पर ध्रुव ने तुरंत उन्हें शांत रहने का इशारा किया। अब आहान और ध्रुव जल्दी से आस्था के पास आए। आहान ने आस्था के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आस्था भाभी, आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही हैं? जाइए नानी माँ को रोकिए, वरना वो उस लड़की को मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देंगी। मुझे लगता है कि आपको जाकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए, आखिरकार वो अरमान भाई की न्यू सेक्रेटरी है और आकाश भाई ने उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया था, वो अच्छी फैमिली से आती है। मुझे लगता है कि अरमान भाई ने ही उसे फोर्स किया होगा, प्लीज़ आप जाइए और उस लड़की को बचाइए, प्लीज़। उनकी इस बात पर अगले ही पल आस्था ने ध्रुव और आहान को जलती हुई नज़रों से देखा। अचानक उसकी आंखों की लालिमा देखकर आहान एकदम से ठिठक गया। पहली बार उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई थी। ये सहरन पहले सिर्फ अरमान को देखकर आती थी, लेकिन आज आस्था की आंखें देखकर उसे बहुत अजीब सी दहशत महसूस होने लगी, इसलिए आहान और ध्रुव तुरंत एक साइड होकर खड़े हो गए। आस्था, जो ये सारा ड्रामा अपनी आंखों से एकटक देख रही थी, वो सीधा आगे बढ़ी और नानी माँ को देखकर अचानक तीखी आवाज़ में बोली, नानी माँ बस कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था की आवाज़ सुनी तो वैसे ही उन्होंने तुरंत ही संजना के बालों को छोड़ दिया। तब संजना अपने बालों को सहलाते हुई नाराज़गी से बोली, ये आप क्या कर रही हैं, क्या आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? अभी इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, आस्था ने लगातार उसे तीन चार चांटे खर भर के उसके मुँह पर चढ़ दिए। अब ये सीन देखकर सब लड़के और लड़कियाँ और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए थे। वहीं आहान खुद को रोक नहीं पाया और आस्था को देखते हुए एकदम ऊँची आवाज़ में बोला, आस्था भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस तरह से किसी अनजान लड़की पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? मैंने आपसे कहा था कि इस लड़की को नानी माँ के हाथों से छुड़ाइए, पर आप तो उल्टा इस लड़की पर ही हाथ उठा रही हैं। आहान की बातें सुनकर आस्था ने एक बार फिर उसे किलर लुक दिया। वहीं आहान आस्था के गुस्से को भांपते हुए एक बार फिर से हड़बड़ा गया और तपाक से ध्रुव के कान में धीरे से फुसफुसाने लगा, भाई आज ये आस्था भाभी को क्या हो गया है? मैं जब जब इनको देखता हूँ ऐसा लगता है कि ये मुझे अपनी आंखों से ही बर्फ का पुतला बना देंगी, ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है? तभी ध्रुव ने इस बात पर उसे धीरे से समझाया, बेवकूफ, अगर कोई पत्नी इस तरह अपने पति को किसी और औरत के साथ देखेगी तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा तो होगी ना, और वो भी आस्था भाभी जैसी। लेकिन तभी आकाश और सुमित एकदम से आगे बढ़े और आस्था की ओर देखते हुए गंभीरता से बोले, आस्था क्या बात है, तुम वैसी लड़की नहीं हो जो अरमान के साथ किसी और को देखकर इस तरह का बर्ताव करने लगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तुम हमसे छुपा रही हो। आस्था क्या बात है, बोलो जवाब दो। अब आस्था ने अचानक आकाश और सुमित को आंसू भरी आंखों से देखा, फिर बिना किसी हिचक के जवाब दिया, आकाश भैया मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में ये लड़की ही आपको बताए, जिसका नाम है संजना सिंह। आस्था का ये जवाब सुनकर अगले ही पल सब लोग एक दूसरे को कन्फ्यूजन में देखने लगे, क्योंकि उसके शब्द किसी धमाके की तरह थे। लेकिन तभी अचानक संजना ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आस्था को देखकर घबराई आवाज़ में बोली, मिसेस सिंघानिया, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? आप अपने घर बुलाकर मुझे मार क्यों रही हैं? हाँ, आप मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रही हैं?
ये बोलते हुए संजना की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर वो तुरंत ही सबकी ओर देखकर रिक्वेस्ट करने लगी, कोई तो मेरी मदद करो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। उसी पल सभी को संजना पर तरस आने लगा, लेकिन अगले ही पल आस्था उसे देखकर चिल्लाई, अपनी नौटंकी बंद कर दे संजना। आस्था के इतना बोलते ही संजना ने रोने के अंदाज में कहा, प्लीज प्लीज। लेकिन अचानक ही उसने अपने बालों को पीछे झटक दिया और एकदम से हंसने लगी। अब संजना को इतनी बुरी तरह से हंसते हुए देखकर सब लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आ गए और सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि एक पल पहले जो लड़की सबके सामने हाथ जोड़कर अपने बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, वो अब अचानक जोर जोर से हंस रही थी। अब सब लड़कियां चिंतित होकर एक दूसरे को देखने लगी।